मनुष्य चाहे तो छोटे से छोटा आदमी बड़ा बन सकता है और बड़े से बड़ा आदमी भी अगर छोटे काम करता है तो छोटा हो जाता है। हजार विघ्न बाधाएं आए फिर भी अपने आप पर जिसकी श्रद्धा है वो ऊंचाई को पा लेता है। महापुरुष और साधारण आदमी में यही फर्क है। दूसरी बात, आप मेरी मानो चाहे ना मानो, एक बात तो मेरी आप जरूर मानो, आज अपने दिल को खुशी से भरे रखूंगा। दो मिनट की सुबह की हंसी जो है तुम्हारे ब्लड सर्कुलेशन में सात्विकता फैलाएगी, रोग प्रतिकारक शक्ति में तो मदद होगी और दिन भर के व्यवहार में भी आपकी वो दो मिनट की प्रसन्नता काम करेगी। सात वर्ष तक हमारा फिजिकल केंद्र पुष्ट होता है शरीर का, दूसरे सात वर्ष हमारा भाव केंद्र विकसित होता है, तीसरे सात वर्ष हमारा विचार केंद्र विकसित होता है। हमारे शरीर में सात केंद्र हैं। चौथे सात वर्ष हमारा मन केंद्र विकसित होता है और पांचवें सात वर्ष हमारा विशुद्ध आज्ञा केंद्र विकसित होता है। छठे में आज्ञा केंद्र और सातवें में शस्त्र सार। अगर अच्छा वातावरण मिल जाए तो थोड़ी छोटी उम्र में सब केंद्र अच्छी तरह से विकसित हो सकते हैं, और वातावरण धार्मिक नहीं है, सज्जनता का नहीं है, तो पूरी उम्र बीत जाए फिर भी एक आध दो केंद्र विकसित होते बाकी ऐसे ही पड़ा रह जाता है। 60-60 साल के लोग हो जाते हैं लेकिन खाना कमाना और जरा सा दुख आए तो भाव में बह गए, जरा सा सुख आए तो भाव में फूल गए। आ गई बीड़ी की इच्छा तो बीड़ी फूंक ली, और आ गया मरने की इच्छा तो आत्महत्या कर लिया। ये आदमी 5 साल 10 साल का बच्चे जैसा ही है, ऊपर के केंद्र उसके विकसित नहीं हुए। कोई देवी देवता तुम्हारा भाग्य लिखकर तुमको फेंक नहीं देता है, तुम्हारे साथ स्वतंत्रता भी देता है। और पशु पक्षियों को तो प्रकृति जो सेट करती है, कंप्यूटराइज कर देती है, ऐसे ही वो जी लेते हैं, लेकिन मनुष्य पर प्रकृति अपना अधिकार 3 वर्ष की उम्र तक रखती है, फिर थोड़ा 50% अधिकार हटा देती है, 5-7 वर्ष के बाद और थोड़ा हटा देती है, और 14 वर्ष के बाद प्रकृति अपना विशेष अधिकार हटा देती है, उसको स्वतंत्रता देती है 14 वर्ष के बाद। इसलिए मनुष्य चाहे तो छोटे से छोटा आदमी बड़ा बन सकता है और बड़े से बड़ा आदमी भी अगर छोटे काम करता है तो छोटा हो जाता है। तो कर्म का बंधन मनुष्य को लगता है, शेर अगर गाय को फाड़ लेता है तो उसको पाप नहीं लगता है, लेकिन मनुष्य अगर गौ माता को परेशान करे तो उसको पाप लगेगा। जय राम जी की। आए भैंस घोड़ा गधा चलते चलते डबल सिंगल करते हैं तो उनको कोई अपराध नहीं माना जाता है, लेकिन मनुष्य का बच्चा या कोई व्यक्ति करता है तो वो अपराध माना जाता है। समाज उसको दंड देती है, समझाती है, डांटती है कि मनुष्य के पशु है। तो मनुष्य की एक विशेषता है कि मन से वो ऊंचा संबंध जोड़ सकता है और उसके लिए उसे स्वतंत्रता दी गई है, और स्वतंत्रता दी गई साथ साथ में स्वतंत्रता का सदुपयोग करने के लिए उसे धर्म का ज्ञान भी दिया जाता है। मनुष्य के जीवन में अगर धर्म का ज्ञान नहीं तो मनुष्य पशु से बदतर हो जाएगा। पशु को नो इनकम टैक्स, नो सेल टैक्स, नो सरचार्ज, नो जमाई प्रॉब्लम, जमाई का प्रॉब्लम नहीं रहता पशु को, मनुष्य को ही सारे प्रॉब्लम रहते हैं। फिर भी मनुष्य सब पशुओं से, पक्षियों से, जीव जंतुओं से, तो क्या देवताओं से भी मनुष्य योनि ऊंची मानी जाती है, क्योंकि ये पुरुषार्थ करके सातों केंद्र विकसित करने की व्यवस्था मनुष्य जन्म में है। जय राम जी की। ध्यान से सुनना, बालक पैदा होता है 7 वर्ष तक उसका फिजिकल शरीर का फाउंडेशन बनता है। उन 7 वर्षों में अगर उसको कोई बीमारी नहीं और माँ बाप की लापरवाही नहीं तो 50 साल वो निरोग रहेगा। दूसरे 7 वर्ष भावना केंद्र विकसित होता है, उसकी भावनाओं में गलत बात न भर जाए तो आदमी बहुत अच्छा हो सकता है। जैसे रणजीत सिंह के पिता ने भावना भर दी कि मेरा बेटा साधारण हीरा पहरेगा, नहीं कोहिनूर पहरेगा, कोहिनूर। रणजीत सिंह में भावना भर दी और वो अफगानिस्तान में हीरा था, और रणजीत सिंह युद्ध खेल के हीरा ले आया अफगानिस्तान से, पहन के दिखा दिया। तो इन 7 से 14 वर्ष के बीच जैसी भावना भर दी गई, शेरों की भावना भर दी गई, हिम्मत की भर दी गई, अथवा डरावनी भर गई, जाना मत भूत है, जाना मत ये हो जाएगा ओ हो जाएगा, तो आप बच्चे का बहुत अहित कर रहे हैं। 7 से 14 वर्ष तक बच्चे को डराने की भावना कभी न बोले, अगर डर हो तभी भी उसको न बोले तो हिम्मत कर, ए हो जाएगा, मर जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ए महाराज ये पकड़ जाएंगे, वैसे ही महाराज से लोग एलर्जी कर रहे हैं, फिर तुम ऐसी भावना भर दो तो फिर पिक्चर में चला जाएगा और कहीं चला जाएगा, ए बाबा पकड़ जा, बाबा क्या पकड़े, और सचमुच में बाबा पकड़े तो 21 कुल तर जाए सच्चा बाबा अगर पकड़ लेता है हाथ तो। जयराम जी तो बोलना पड़ेगा। हमको भी किसी बाबा ने हाथ पकड़ा है तो देखो कैसा मजा आ रहा है। नारायण 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 बोलो ना, तुम कंजूसी ना करो। नारायण नारायण ना। एक बात तो आप मेरी एक प्रार्थना तो पक्की स्वीकार करो, दूसरी बात आप मेरी मानो चाहे ना मानो, एक बात तो मेरी आप जरूर मानो, ये मेरी प्रार्थना मानो कि कुछ भी हो जाए अपने हृदय को बिगाड़ो नहीं और हृदय को प्रसन्न रखो। चित्त को प्रसन्न रखना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। चाय बिगड़ जाए तो फिक्र नहीं, कपड़ा बिगड़ जाए तो फिक्र नहीं, अपना दिल मत बिगाड़ो। दिल में दिल भर परमात्मा खुद रहता है, इसलिए हंसते खेलते जीवन जियो। जो धन मिला तो मिला, गया सो गया। जो मान मिला सो मिला, गया सो गया। लेकिन उस अपमान को याद करके अभी क्यों परेशान हो, घाटे को याद करके अभी क्यों परेशान हो, अथवा भविष्य की कल्पना में आज का वर्तमान क्यों दुखी करे। जो भूतकाल का चिंतन करके दुखी होते हैं वो पीठ के बल से गिरते हैं, और भविष्य की कल्पना से दुख मनाते हैं वो मुंह के बल से गिरते हैं, और वर्तमान में जो आसक्त होते हैं वो वर्तमान का दलदल बना लेते हैं। आप वर्तमान में आसक्त मत होइए और भूतकाल का चिंतन करके पीठ के बल से मत गिरिए और भविष्य की कल्पना में मुंह के बल मत गिरिए। आप तो प्रसन्न रहकर परमात्मा प्राप्ति की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते अकाल पुरुष का साक्षात्कार कर दीजिए, पर ब्रह्म का मुलाकात करिए। इसलिए ही तुम्हारी इतनी बढ़िया बुद्धि देव ने बनाई है। पेट भरने के लिए इतनी सारी मनुष्य को बुद्धि की कोई जरूरत नहीं है। पेट भरने की बुद्धि तो मच्छर के पास भी है। हमारे कई आश्रम है, उसमें एक सौराष्ट्र में आश्रम है, राजकोट में, भावनगर में भी है, राजकोट में आश्रम है, वहां मच्छर बहुत होते हैं होलसेल में। राजकोट में मच्छर इधर बैठते उधर बैठते मैं देखा, मच्छर में भी इतनी अकल है कि कहाँ बैठना चाहिए और बोरिंग कहाँ करना चाहिए। इतनी अकल मच्छर को है, बच्चा पैदा करने की अकल मच्छर को है, प्रॉब्लम आ जाए तो भाग जाने की अकल मच्छर को है, धुआं देख के भाग जाता है। इतनी अकल तो मच्छर को है, कोई यूनिवर्सिटी में गया ही नहीं। मैंने बहुत ट्राई की, मेरी दाढ़ी पे बैठ यार मैं भगाऊंगा नहीं। कई बार ही लंबी सारी दाढ़ी है मेरी दाढ़ी पे, मच्छर को कई बार बैठने के लिए मैंने चांस दिए, नहीं बैठा। वो देखता है बाबा की दाढ़ी में मिलेगा क्या। जयराम जी की इतनी अकल तो मच्छर के पास है, तो मानना पड़ेगा कि परमात्मा की चेतना चैतन्य भी है और ज्ञान स्वरूप है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है। इतनी अकल तो मच्छर की कितनी बारीक खोपड़ी होगी, इतनी अकल तो मच्छर में भी है। तो भगवान ज्ञान स्वरूप है और सूक्ष्म है, सूक्ष्मतम है, और प्राणी मात्र के हृदय में, प्राणी मात्र के मस्तक में उसके ज्ञान स्वरूप का दर्शन आपको होता है। जय राम जी की। अणुरो अणुयान महत्तो महयान, वो अणु से भी अणु है और महान से भी महान है, छोटे से भी छोटा है, उसलिए बारीक से बारीक जंतु में भी उसकी चेतना दिखती है, और बड़े से बड़ा है कि ब्रह्मा आदि भी उसका ध्यान करके सत्ता स्फूर्ति और ज्ञान पाते हैं। जैसे आकाश सूक्ष्म से सूक्ष्म है, छोटे से छोटा है आकाश और बड़े से बड़ा है आकाश। आकाश इतना छोटा है कि लोहे के अंदर भी घुस जाता है। अगर लोहे के अंदर आकाश न घुसा हो तो अग्नि में लोहा डालो तो लाल कैसे हो, अग्नि अंदर कैसे प्रविष्ट होती है, जरूर थोड़ी गैप है तभी जाता है अग्नि। तो आकाश इतना सूक्ष्म है कि लोहे में भी उसका अस्तित्व है, इससे भी ज्यादा वो अकाल पुरुष सूक्ष्म है कि आकाश में भी उसकी सत्ता है। जलो अप्सु कौन्तेय प्रभा अश्मि शशि सूर्यो प्रणव सर्ववेदेषु शब्द खय पुरुषम नृषुः। जल में रस मुझ चैतन्य का है, सूरज और चंदा में जो चमक है वो परमात्मा की है, माँ में जो वात्सल्य है वो परमात्मा का है, पिता में अनुशासन का भाव उस परमात्मा सत्ता से आता है। कीड़ी में तू नानो लागे, हाथी में तो मोटो क्यों, बण मावत ने माथे बैठो हाकण वालो तू को तू, ऐसो खेल रचो मेरे दाता जहां देखूं वहां तू को तू। ले झोड़ी ने मागण लाग्यो देवा वालो दाता तू, ए बेन कटको रोटली आलो तुम्हारा छोकरा छैया सुखी रे आपो ने बा। बुढ़िया है, ए ए माई इधर ले ये पूरी ले ले, मुंथाल मेरी बहू देखेगी आज की पढ़ी लिखी है, जल्दी जल्दी ले जा, किसी को बोलना नहीं ले जा। अब लेने वाले में कौन बैठा और देने वाले में कौन बैठा है। ले झोड़ी ने मागण लाग्यो देवा वालो दाता तू, कर चोरी ने भागण लाग्यो पकड़ने वालो तू को तू, ऐसो खेल रचो मेरे दाता जहां देखूं वहां तू को तू। सासू में वो तुम बैठो ने बहू में तुम बैठो, बहू को स्वभाव जरा कैसो है, सासू को स्वभाव वैसो है, लेकिन दोनों में बैठो तो तू है। पंखा को स्वभाव हवा देने को है और फ्रिज को स्वभाव पानी ठंडो करने को है, लेकिन बैठो दोनों में पावर हाउस को करंट है। जयराम जी तो बोलना पड़ेगा, वो प्रेस में है, कपड़ा प्रेस करने वाले में वो कोयल गर्म गर्मी बनाती है और फ्रिज में जो साधन है वो ठंडी बनाते हैं, लेकिन दोनों में बैठी तो वही लाइट है। ऐसी जिसके क्रूर विचार है उसमें भी सत्ता उसी की है, वो क्रूरता बनाता है, और जिसमें सज्जन विचार है सत्ता उसी की है, वो सज्जनता बनाता है। इसलिए उस परमात्मा को गहराई में देखोगे तो राग द्वेष कम होगा। जैसे सागर के किनारे जाओ तो कोई अच्छे तरंग कोई मलिन तरंग, मिट्टी के प्रदेश में सागर के तरंग मलिन दिखते हैं और पथरीली धरती पर उस सागर की लहरें साफ सुथरी दिखती है। हमने अफ्रीका में मोबासा में देखा कि एकदम दूध जैसा सागर का पानी, और सूरत में देखा तो एकदम मेला मटुला। सागर तो वही का वही, लेकिन तट अलग अलग होने से उसके तरंग अलग अलग दिखते हैं, फिर भी सागर की गहराई में शांत उदी है। ऐसे तुम्हारे मन के तरंग अलग अलग दिखते हैं, मन की गहराई में वो अकाल पुरुष की शांति का साक्षात्कार कर लो तो बेड़ा पार हो जाएगा। वहाँ कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई ईसाई नहीं, कोई मुसाई नहीं, कोई माई नहीं, कोई भाई नहीं, वहाँ तो वही वह है अपने आप खुदा के बाप। खुदा भी उसी से प्रकट होता है और राम रहमान कृष्ण मैं तुम सब उसी से पैदा होते, उसी में जीते हैं, उसी में विलय हो जाते हैं। उसका एक बार साक्षात्कार हो जाए तो तुम्हारी निगाह जिन पर पड़ेगी वे भी निष्पाप होने लगेंगे, तुम इतने पवित्र हो जाओगे। ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी, तुम्हारी निगाहों से अमृत बरसेगा। स्वर्ग का अमृत पीने से पुण्य नाश होता है और ब्रह्मज्ञानी की निगाहों का अमृत पीने से पाप नाश होता है। स्वर्ग का अमृत पीने से अप्सराएं मिलती और सेक्सुअल केंद्र उत्तेजित होते हैं, और ब्रह्मज्ञानी की निगाहों से सेक्सुअल केंद्र में शांति होती है, काम राम में बदलकर जीवन ऊर्ध्वगामी होने लगता है। इतना सारा फायदा तुमको तो होगा, तुम्हारा दर्शन करने वाले को होगा। इसलिए वेद भगवान की बात आप और हम उच्चारण करेंगे, ये यजुर्वेद का मंत्र हम उच्चार रहे हैं। व्रतेन दीक्षाम आपनोति, व्रतेन दीक्षाम आपनोति, व्रतेन दीक्षाम आपनोति, व्रतेन
दीक्षाम आपनोति,
दीक्षायाम आपनोति दक्षिणाम, दीक्षायाम आपनोति दक्षिणाम, दीक्षायाम आपनोति दक्षिणाम, दीक्षायाम आपनोति दक्षिणाम, दक्षिणया श्रद्धाम आपनोति, दक्षिणया श्रद्धाम आपनोति, दक्षिणया श्रद्धाम आपनोति, दक्षिण श्रद्धाम आपनोति, श्रद्धया सत्यम माप्यते,
श्रद्धया सत्यम माप्यते,
श्रद्धया सत्यम माप्यते,
श्रद्धया सत्यम माप्यते।
ये यजुर्वेद के मंत्र का अर्थ है, व्रत से दीक्षा मिलती है, व्रत से दीक्षा मिलती है, दीक्षा से दक्षता आती है, और दक्षता से श्रद्धा प्राप्त होती है, और श्रद्धा से सत्य की प्राप्ति होती है। सत्य माना जिसमें श्री कृष्ण राम अल्लाह खुदा ईसा मूसा प्रकट हो होकर विलय हो गए, फिर भी जो एक रस है आद सत्य जुगात सत्य है, उस सत्य की प्राप्ति हो जाती है। तुम्हारे जीवन में तुम मनुष्य हो, तुम्हारे जीवन में कोई छोटा मोटा अगर तुम्हारे जीवन में व्रत है तो तुम्हारे व्रत के बल से तुम्हारे जीवन में दक्षता आएगी। पशु के जीवन में कोई व्रत नहीं होता, इसलिए पशु का विकास इतना नहीं हो सकता जितना मनुष्य का हो सकता है। तीसरा केंद्र मनुष्य विकसित कर सकता है, हाथी का पहला दूसरा केंद्र आंशिक विकसित है और मनुष्य का भले 2%, तीसरा चौथा केंद्र विकसित है तो महावत हाथी पर राज्य करता है, जय राम जी की। हाथी है तो मोटा, बल तो हाथी में ज्यादा है, 5,500 गाय भैंस पर एक अहिर का छोड़ा हुकम चलाता है। क्यों? कि मनुष्य में ये क्षमताएं हैं कि वो अपना दूसरा तीसरा चौथा केंद्र विकसित कर सकता है। जितने ऊपर के केंद्र ज्यादा विकसित, उतना ही वो आदमी का अधिकार ज्यादा हो जाता है। जैसे मजदूर मजदूरी करता है, हट्टा कट्टा है, विक्रम सीमेंट कंपनी में भी लेबर काम करता है, उससे कोई ज्यादा काम साहब लोग नहीं करते। जयराम जी की, हो सकता है कि लेबर साहबों से भी ज्यादा परिश्रम करता हो, लेकिन लेबर को 20-25-30 रुपए मिलते होंगे, 35 मिलते होंगे, हद हो गई। लेकिन जो साहब है उनको तो गाड़ी मिलती है, रोज का 35-50 रुपया तो गाड़ी का ब्याज खा दो ही जाता है। जय राम जी की। और साहबों को बंगला मिलता है और सुविधाएं मिलती है, तो इतना फर्क क्यों? लेबर ने अपना परिश्रम है लेबर के पास, लेबर का प्रथम शरीर तो काम करता है, लेकिन बौद्धिक शरीर साहब का काम करता है, तीसरा केंद्र साहब का विकसित है लेबर की अपेक्षा। जैसे मकान चुनाई वाले कड़िया, कारीगर को गुजरात में, चुनाई करने वाले को गुजरात में कड़िया बोलते हैं और हेल्पर को मजदूर बोलते हैं, तो वहां मजदूर को 20 रुपया मिलता है और कड़िया को 60 रुपये मिलते हैं। मजदूर पहले आ जाता है और उसका बॉस बाद में आ जाता है, मजदूर बाद तक रहता है और बॉस पहले चला जाता है। फिर भी बॉस को 60 रुपए मिलते हैं, मजदूर को 20 मिलते हैं। और आर्किटेक्ट को तो मजदूर के बॉस से भी बहुत ज्यादा मिलता है, और एयर कंडीशन में बैठे बैठे वो डिजाइन बना देता है। तो जितना आदमी का तीसरा शरीर विकसित है, उतना ही कम मेहनत में, कम समय में वो ज्यादा उपलब्धि पा लेता है। सड़क पर जो मजदूर पत्थर उठाते हैं, यहाँ रोड बनाते हैं, उसकी अपेक्षा जिलाधीश बैठे बैठे डिजाइन मानसिक आइडिया से पूरे जिले की देखभाल करता है। और जिलाधीश हर रोज ऑफिस में रहे ये जरूरी नहीं होता, कई बार दौरे पे जाए, इधर जाए उधर जाए। और जिलाधीश की अपेक्षा भी तीसरा शरीर जिनका ज्यादा विकसित है, वो कई जिलाधीशों को आदेश भी देने की जगह पर पहुंच जाते हैं। मानना पड़ेगा। जयराम जी की। आइंस्टीन से पूछा गया कि इतने प्रसिद्ध कैसे हुए, बोले मैं रोज मेडिटेशन करता हूँ, ब्रह्मचर्य पालता हूँ, जीवन में कोई व्रत है, वो तीसरा शरीर ज्यादा विकसित हुआ। साधारण आदमी का तीसरा शरीर 2-5% विकसित होता है, वो आजीविका जीता और साधारण जन समाज की नाई वो जीता है। अगर उसको कोई संग मिल जाए या कोई पुरुषार्थ अगले जन्म का या इस जन्म का है, तो 5% की अपेक्षा अगर 6-7% उसका तीसरा शरीर, तर्क शरीर, बौद्धिक शरीर विकसित होता है, तो अपने अपने इलाके में वो ऊंचा दिखेगा। अगर 5-7% से भी कुछ 8-9% पर पहुंचता है, तो चाहे छोटे से देहात में हो, फिर भी भोपाल तक पहुंच जाएगा, अथवा तो दिल्ली तक पहुंच जाएगा। जयराम जी बोलना पड़ेगा। अगर 10-11% विकसित है और दिल्ली या भोपाल की इच्छा है, तो वहां पहुंच जाएगा। अगर यहां से कुछ और ऊंची इच्छा है, तो किसी ब्रह्मज्ञानी गुरु तक पहुंच जाएगा, और दिल्ली और भोपाल वाले दुआ प्राप्त करके अपना भाग्य बना दे, ऐसा आत्मज्ञान का रास्ता भी वो पकड़ सकता है। राजा जनक दिल्ली और भोपाल तक पहुंच गए थे, ऐसा समझ लो, राज्य था उनको। फिर भी अष्टावर का वक्र का 4th, 5th, 6th शरीर विकसित है। राजा जनक ने देखा कि ये राज्य पाठ तो मिला, इसका सुख कितना भी मिले, फिर भी इन चीजों का संयोग जन्य सुख है, हृदय का सुख पाना है तो जिनका हृदय केंद्र विकसित हुआ है, उनके चरणों में जाना पड़ेगा। अनहद सुनो बड भागियां, सकल मनोरथ पूरे। राजा के सब मनोरथ पूरे कभी नहीं हो सकते, चाहे उसके पास सत्ता है, कई लोग हैं उसके कहने में, फिर भी उसके कुछ मनोरथ रह जाते हैं। जिसका चौथा केंद्र विकसित हुआ, उसके सकल मनोरथ पूरे होते हैं। बुद्धिमान धनवानों ने, ऑफिसरों ने और राजा महाराजाओं ने महापुरुष की शरण स्वीकार की, और महापुरुष की शरण स्वीकार की जो चौथा केंद्र विकसित है, ऐसे महापुरुष चौथे केंद्र तक हमको ले जाते हैं। लेकिन जो 5th, 6th और 7th तक पहुंचे हुए हैं, ऐसे ब्रह्मज्ञानी अगर मिल जाते हैं, तो चौथे केंद्र वाले भी उनके भक्त होंगे, तीसरे वाले, पांचवें वाले, छठे वाले, ब्रह्मज्ञानी सबको साथ ले चल सकता है, क्योंकि ब्रह्मज्ञान सबसे ऊंचा है, आत्म साक्षात्कार सबसे ऊंचा है। ग्वाल और गोपियों को भी कृष्ण मदद रूप हो रहे हैं और अर्जुन जैसे बुद्धिमान वीर को भी मदद कर रहे हैं और बड़े बड़े योगियों को भी श्री कृष्ण मदद रूप हो रहे हैं और श्री राम भी मदद रूप हो रहे हैं, क्योंकि श्री राम और श्री कृष्ण ब्रह्मज्ञानी थे। इस ब्रह्म ज्ञान को पाने के लिए तुम्हारे जीवन में व्रत कोई होना चाहिए, ऐसा वेद भगवान का कहना है। तुम्हारे जीवन में छोटा मोटा व्रत होगा तो तुम्हारे तीसरा केंद्र विकसित होगा, तुम्हारे व्यवहार में दक्षता आएगी। आज इंडिया में दक्षता की बहुत कमी है और बातों में हिंदुस्तान अभी बहुत आगे है, बड़ा चढ़ा है, लेकिन काम करने में हिंदुस्तान के लोग बेचारे पिछड़ जाते हैं, केयरलेस रह जाते हैं, डल और लेजी हो जाते हैं, ड्यूटीज गॉड नहीं समझते हैं, कर्तव्य अपना नहीं समझते, भूल जाते हैं, क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाता हिंदुस्तान, वैरायटी जो दिखाता है वो दे नहीं पाता। क्यों? कि हमारे जीवन में व्रत चला गया, 1100 वर्ष गुलामी की जंजीरें पड़ी रही, ब्लड में वो भय बनाया, 900 वर्ष फिर अराजकता वाले ने शोषा वो गुलामी, और फिर 200 वर्ष अंग्रेजों ने शोषा पोषा, इससे हमारे जो आध्यात्मिक बल था वो उस आध्यात्मिक बल का जो हमें फायदा उठाना चाहिए था उस फायदा से हमारा जन साधारण समाज वंचित हो गया है। कुछ लोग जो उठाते वो महापुरुष होकर अभी भी परदेश में पूजे जाते हैं। हमारी संस्कृति बहुत बढ़िया है लेकिन हम पाश्चात्य कुप्रचार का शिकार बन गए। सिगरेट और बीड़ी ये यूरोप का प्रचार है, तंबाकू और चाय का प्रचार अंग्रेजों ने किया इस देश में। अब तो घर घर में एक बीड़ी पीने से 6 मिनट उम्र नाश होती है, एक माला जप करने से जो सात्विक वाइब्रेशन पैदा होते वो नष्ट होते हैं और हवामान में प्रदूषण जाते वो तो अलग। एक आदमी बीड़ी पीता उसके साथ 6 आदमी बैठे तो 6-6 का सत्यानाश होता है निकोटिन पॉइजन से। बीड़ी तो एक पिए और पड़ोसी 6 बैठे उनको घाटा पड़ता है। ऐसे हरिनाम कीर्तन और ध्यान तो एक आदमी करता है और कुटुंब को उसके वाइब्रेशन मिलते हैं। एक आदमी शराब पीता है उसके बेटे को कैंसर हो सकता है, बेटे के बेटे को 10वीं पीढ़ी तक कैंसर हो सकता है। ऐसे एक आदमी ध्यान भजन करता है तो उसके एक घन मिलीमीटर ब्लड में 1500 जैसे श्वेतकण तैयार होते हैं और उसकी 21 पीढ़ी तर सकती है। जब बोतल की शराब से 10 पीढ़ियां बर्बाद हो सकती है तो हरिनाम की शराब से 21 पीढ़ियां आबाद हो जाए तो क्या आश्चर्य। आपके जीवन में थोड़ा सा व्रत लाओ कि हर रोज सुबह नींद में से उठकर भगवान का इतनी देर सुमरण करेंगे, चाहे 2 मिनट ही सही, आपकी नींद खुल जाए लेकिन आंख न खुले। शरीर को बराबर खींचो कसो, 1-2 मिनट शरीर को खींचो। तुमने देखा होगा कि बिल्ली और कुत्ता जब नींद में से उठता है ना शरीर को खींचता है, और मनुष्यों और पशु पक्षियों की अपेक्षा बिल्ली और कुत्ता ज्यादा एक्टिव रहते और कम बीमार पड़ते हैं। जब आप नींद करते तो आपकी इंद्रियां मन में लीन होती है, मन बुद्धि में लीन होता है और बुद्धि उस अनजाने में अज्ञान अवस्था में अंतर्यामी परमात्मा में विलय होती है। आप जब शरीर को खींचते हैं तो जैसे डॉक्टर इंजेक्शन खींचता है अथवा रंग की पिचकारी में से रंग खींचा जाता है, ऐसे शरीर को खींचते हो तो आत्मचेतना के कण ज़्यादा आते हैं। 1-2 मिनट शरीर को खींचो, खूब खींचो नींद में से उठो तो। फिर शरीर को ढीला छोड़ दो, जहां तुम्हारे अंगों में शरीर में घसाव ज्यादा होगा, विटामिनों की कमी होगी, थकान आदि होगी, वहां वह शक्ति सेट हो जाएगी, तुम्हारा शरीर तंदुरुस्त रहेगा। 2 मिनट शरीर को खींचना, 2 मिनट शरीर को ढीला छोड़ना, फिर 2 मिनट तुम बैठ जाओ, हे परमात्मा मेरा और तेरा सनातन संबंध है, आज मैं जो कुछ करूं तेरी रहमत से तेरी प्रसन्नता के लिए करूं, मैं अपना होमी रोग न बढ़ाऊं लेकिन मेरी बंदगी बढ़ाऊं, ऐसे ही मेरे से कर्म करवाना। हे प्रभु मैं कहीं भूलूं तो तुम मुझे प्रेरणा देना, ऐसा भगवान से थोड़ी मानसिक बातचीत करो। 2-2 मिनट 6 मिनट हो गए, आखिरी 2 मिनट तुम जोर से हंसो कि जो होना है सो होना है, पाना है सो पाना है, आज अपने दिल को खुशी से भरे रखूंगा। 2 मिनट की सुबह की हंसी जो है तुम्हारे ब्लड सर्कुलेशन में सात्विकता फैलाएगी, रोग प्रतिकारक शक्ति में तो मदद होगी और दिन भर के व्यवहार में भी आपकी वो 2 मिनट की प्रसन्नता कुछ अंश में काम करेगी। जय राम जी की। ये छोटा सा व्रत आप 40 दिन करके देखिए, आपको फायदा हो तो आपका है, अगर आपको कोई फायदा नहीं होता है तो 6-7 घंटे बनते हैं, जो भी समय बनता हो 13 घंटे और 20 मिनट बनते 10-10 मिनट के गिन के, तो उतनी देर हम आपके घर के बर्तन मांजने को आ जाएंगे अगर आपको फायदा नहीं हुआ तो। टाइम बैक गारंटी, पैसा तो नहीं ले रहे हैं, टाइम आप खर्चेंगे उसमें अगर आपको लाभ न हुआ तो मैं आपके घर की जो भी आप मेरे से हो सके वो आपके घर की सेवा करने को मैं बंधा हुआ हूँ। लेकिन ईमानदारी से करोगे तो, नहीं तो ऐसे ही खत लिखोगे तो मैं जवाब भी नहीं दूंगा, समझ जाना। नारायण नारायण बोलो ना। और ये प्रयोग करने से फायदा होता है, इसलिए आज तक किसी के घर बर्तन मांजने की जरूरत मुझे पड़ी भी नहीं। नारायण बोलो ना, नारायण नारायण। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा, न मन मुल्ला न बन काजी, न मर भूखा न रख रोजा, न जा मक्के न जा काशी, न बन बम्मन न बन मिया। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा, 2 मिनट हंसी की लौ लगाकर हाथ देकर बिस्तर छोड़ो, फिर अपना दिनचर्या जो जप ध्यान पुण्य करते जो भी आप करते हैं, 1 घंटा बीत गया, 1 मिनट रेस्ट कर दिया, शरीर को ढीला छोड़ दिया, अपनी कुर्सी पे अपनी गद्दी पे अपने जहां भी बैठे, जो काम हुआ शरीर से हुआ, विचार मन से हुआ, निर्णय बुद्धि से हुआ, इन सब को सत्ता देने वाला मेरे रब, मेरा परमात्मा, हे मेरे राम, मेरे खुदा, तू रोम रोम में खुद ही है, इसीलिए खुदा है, रम रहा है इसलिए राम है, तेरी जय हो। फिर आप नया शुरू 1 घंटा शुरू कर दीजिए, आपके तन की तंदुरुस्ती, मन की प्रसन्नता और बुद्धि की समता बढ़ती जाएगी। व्रतेन दीक्षा मापनोति, व्रत से दक्षता आएगी और दक्षता से क्या होगा, श्रद्धा पैदा होगी, आपकी अपने आप पर श्रद्धा होगी। जिसकी अपने आप पर श्रद्धा नहीं वो आदमी कुछ नहीं कर सकता है। 1000 विघ्न बाधाएं आए फिर भी अपने आप पर जिसकी श्रद्धा है वो ऊंचाई को पा लेता है। महापुरुष और साधारण आदमी में यही फर्क है। जिनके जीवन में दृढ़ श्रद्धा है, महापुरुष में भी 2 विभाग होते हैं, एक ऐहिक वस्तुओं के लिए श्रद्धा करके कर्म में लगा रहता है वो संसारी ऊंचाई को छूता है, और दूसरा परमात्मा के लिए लगा रहता है वो परमात्मा तत्व को पा लेता है। लेकिन जरूरी तो जीवन में है दृढ़ता, अपने आप पर श्रद्धा रखो। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ, भगवान उसे ही मदद करता है जो अपने आप को मदद करता है। मैंने सुनी है वो कालू मियां रोजा रखा और चोरी करने को गया, किसी किसान के बैल खोले, बैल थोड़े दूर ले गया, बैलों के जो गले में थी घंटी गिंगरू उसका आवाज सुनकर बूढ़ा जगा, बूढ़े ने जवान को जगाया, जवान ने दोस्त को जगाया, गांव के लोग पीछा करते हुए डंडे लेकर आए, पकड़ो पकड़ो वो चोर चोर चोर। गुलाम नबीर कहता है कि खुदा ताला मैंने रोजा रखा है, 13वां रोजा है, चलने की शक्ति नहीं, तू मेरे को बचा। अंदर से आवाज आया बैल छोड़कर भाग जा। बोले मेरे खुदा ताला मैं भाग नहीं सकता हूँ। बोले अच्छा भाग नहीं सकता है तो कम से कम जल्दी जल्दी चलकर पेड़ के पीछे छुप जा। बोले वो भी नहीं हो सकता, खुदा ताला तू बचा। इतने में तो लोग आ गए, खुदा के बच्चे, धड़ाक धूम मिटाई घुटाई करते करते जाकर कमरे में पूर दिया। हृदय से आकाशवाणी हुई, हिम्मत है बंदे तो मददे खुदा, बेहिम्मत बंदा तो बेजार खुदा। बंदा तू हिम्मत करे तो मदद खुदा की मिलती है, और तू बेहिम्मत हो जाए तो खुदा बेजार हो जाएगा। इसलिए आप अपने जीवन में कोई व्रत लाइए और व्रत से अपनी दृढ़ता बढ़ाइए। दृढ़ता से फिर क्या होगा, व्रतेन दीक्षाम मापनोति, दीक्षाम मापनोति दक्षिणाम। व्रत से दीक्षा मिलती है, दीक्षा से दक्षिणा मिलती है, और दक्षता से श्रद्धा प्राप्त होती है, और श्रद्धा से सत्य की प्राप्ति होती है। सत्य वो नहीं कि 2 और 2 4 सत्य है, तो सत है, सत्य सत्य स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार होगा। जीवन में श्रद्धा लाओ। श्रद्धा तो आज लोग बोलते हैं हम श्रद्धा क्यों करें, श्रद्धा किए बिना तो तुम्हारा संसार का व्यवहार भी नहीं चलता है। अपने बाप पर भी श्रद्धा करनी पड़ती है और हजाम जो दाढ़ी बनाता है ना उस पर भी श्रद्धा करनी पड़ती है, डॉक्टर के इंजेक्शन में भी श्रद्धा करनी पड़ती है और बस के ड्राइवर पर भी श्रद्धा करनी पड़ती है, जो यहाँ से उठाकर वहाँ रखते हैं उन पायलटों पर भी श्रद्धा करनी पड़ती है। तो जो जीवात्मा को परमात्मा तक पहुँचाए उस शास्त्र और ब्रह्मज्ञानी के वचन में श्रद्धा करे तो बेड़ा पार हो जाएगा।